संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन बिचरे हमारे ध्यान। समय सार परमागम की 14वीं गाथा आरंभ की है, जिसमें कहा गया है कि भगवान आत्मा को जो अवध स्पष्ट अनन्य नियत अवशेष असंयुक्त जानता है देखता है, उसे तुम शुद्ध नय जानो। शुद्ध नय की परिभाषा है, देखो अपने आप निश्चय नय के दो भेद हैं, एक शुद्ध निश्चय नय एक अशुद्ध निश्चय नय। अशुद्ध निश्चय नय तो एक ही प्रकार का है, तो शुद्ध निश्चय नय के तीन भेद हैं। एक देश शुद्ध निश्चय नय और शुद्ध निश्चय नय और परम शुद्ध निश्चय नय। अब एक शुद्ध निश्चय नय के तीन भेद हैं और बीच के भेद का नाम भी शुद्ध नय है। इससे कभी कभी भ्रम हो जाता है कि ये जो शुद्ध नय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो किसके अर्थ में कर रहे हैं। अभी बहुत संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि आत्मा रागादि सहित है, रागी है, द्वेषी है, मिथ्या दृष्टि है, इसका नाम है अशुद्ध निश्चय नय। क्योंकि राग द्वेष और मिथ्यात्व जो अशुद्धता है पर्याय है, और इनसे सहित आत्मा को देखा इसलिए उसे कहा अशुद्ध। क्योंकि ये पर्याय आत्मा की ही हैं इसलिए कहा निश्चय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आपने पढ़ा हुआ जिस द्रव्य की जो परिणति है उसे उसी द्रव्य की कहना वो निश्चय नय है, और उसी को उसी द्रव्य की न कहकर निमित्तादि की अपेक्षा अन्य द्रव्य की कहना वो व्यवहार नय है। तो ये राग देश के परिणाम भी आत्मा की ही पर्याय है ना भिकारी, इसलिए तो है वो निश्चय नय। और क्योंकि वे अशुद्ध है इसलिए अशुद्ध निश्चय नय है ना। और भेद सो व्यवहार और अभेद सो निश्चय, फिर रागादिक से आत्मा को अभेद बताना बताते हैं यहाँ पर। रागी आत्मा, आत्मा में राग है ऐसा कहते ही तो ये उत्तरित सद्भूत व्यवहार नय हो जाएगा, रागी आत्मा कहते ही अशुद्ध निश्चय नय हो जाएगा। जैसा इतना भेद समझते हैं या नहीं समझते। अभी फिर एक देश शुद्ध निश्चय माने क्या, सम्मादर्शन पैदा हो गया, छाए सम्मादर्शन तो फिर अनुष्ठान में पैदा हो गया। अब सम्मादर्शन तो बिल्कुल पूरा है लेकिन अभी आत्मा पूरा शुद्ध नहीं हुआ, अभी अनंतानबंदी गई है तो चारित्र गुण में उतनी शुद्धि आ गई और अशुद्धि भी बहुत बाकी है अप्रत्याख्यान संबंधी, तो उसको कहते हैं एक देश शुद्ध, मान पूरी तरह शुद्ध नहीं है। तो इस एक देश शुद्धि को आत्मा से अभेद बताना वो इसका नाम है एक देश शुद्ध निश्चय नय। जीव सम्य दृष्टि है, आत्मा में सम्मा दर्शन है, एक व्यवहार नय हो जाएगा, अनुपचय सद्भुत व्यवहार नय। और आत्मा सम्य दृष्टि है ये एक देश शुद्ध निश्चय नय, थोड़ा बारीक फर्क है, वो उसमें भेद डालते हैं इसलिए वो भेद व्यवहार हो जाता है, इसमें अभेद डालते हैं इसलिए ये निश्चय हो जाता है। फिर जो केवल ज्ञान आदि पूर्ण शुद्धि है उससे आत्मा को अशुद्ध अभेद कहना वो शुद्ध निश्चय नय है ना। अब ये तीनों अशुद्धि एक देश शुद्धि और पूर्ण शुद्धि, इन तीनों से रहित जो आत्मा है वो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है ना। तो इस तीनों हैं अशुद्धि और शुद्धि और एक देश शुद्धि, ये तो पर्यायों में होती है, तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों से रहित माने पर्यायों से ऐसा अर्थ हो गया। और ये जो शुद्धि अशुद्धि वाली पर्याय, ये जो पर्यायों का जो स्वभाव है वितरेकी होना, जो अश्विनी गाथा में प्रतिसार में कहा है अन्वय सो द्रव्य, अन्वय का विशेषण सो गुण और अन्वय का वितरेक सो पर्याय, वो पर्याय से अलग नहीं हो गया आत्मा। यदि पर्याय से अलग हो जाएगा तो गधे के सिंह जैसा हो जाएगा, ये तो वास्तव में पर्याय की उपाधि का निषेध हुआ। तो ये जो वो परम शुद्ध निश्चय नय है उसको यहां इस गाथा में शुद्ध नय कह रहे। अब तुम शुद्ध नयम बयानी ही, तो इसमें से जो चार प्रकार का निश्चय नय है और उसमें तीन प्रकार का जो शुद्ध नय है उनमें से कौन सा लेना, ये निर्णय आपको करना पड़ेगा। तो ये लेना वो परम शुद्ध निश्चय नय वाला जो लास्ट का है वो लेना है, इतनी सी बात है। तो अभी आप प्रमाण लाला के दिखाओगे कि ये लिखा है देखो साहब कि ये शुद्ध निश्चय नय तो केवल ज्ञान सहित आत्मा को कहा है और तुम ये शुद्ध निश्चय नय को कह रहे उससे रहित। प्रवचन सार की 179 में गया था, 79 में 189 गाथा में लिखा है कि आत्मा शुद्ध निश्चय नय से रागी देती है, राग देश का करता है शुद्ध निश्चय नय। और अकेली उस गाथा में नहीं है संजीव, क्योंकि आगे पीछे की सारी गाथाओं में पूरे प्रकरण में इसी टोन पर बात की है ना। गुरुदेव श्री ने अपना प्रथम उसको खुलासा किया कि चरणाम योग का प्रकरण है तो मतलब किसका, इसलिए यहाँ पर उस दृष्टि से पर वो अपनी है, पर्याय है, व्यवहार स्वभाव है लेकिन अपना है, इसलिए समझे ना। पर इस अर्थ में वो शुद्ध है, किसी दूसरे की चीज नहीं है, अपनी है, इसी को यहाँ पर शुद्ध कहते हैं। अब वो क्या करे, अभी आप उसमें लिखा है किया हुआ है तो अपन को अब जैसा क्यों लिख दिया, नहीं लिखना चाहिए था, अभी हमने लिखा हो तो आप हमारा गला पकड़ सकते हैं क्योंकि अभी हम जिंदा हैं, 7 साल 5 साल बाद तो आप हमारा भी नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन अभी जो लोग चले गए लिख के, अब हम क्या कर सकते हैं, कुंद कुंद लिख गए क्यों, हम भी तुमने लिख गए, अब हमारे पास तो यही है कि हम उसकी अपेक्षा समझ लें और जहां जहां दे गए योग्य से तहां समझ लो वहां वो अपेक्षा लगा के अपने हम ज्ञान को निर्मल कर लें, ख्याल में ना। ये दूसरा कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। तो यहां जो बात चल रही है वो शुद्ध नय कौन सा नय इतना ध्यान रखना, हर गाथा की अलग बात होती है। आप लोग पहले आए थे तब तो आपने ऐसा कहा था, अरे अभी तो क्या हम चलो ही ऐसा कहेंगे दूसरी गाथा आएगी दूसरा प्रकरण आएगा तो है, लेकिन आपको अपेक्षा अपना आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके प्रश्न ही प्रश्न खड़े हो जाएंगे। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जितने भी आगम प्रमाण प्रस्तुत किए हैं वो सब शिष्य के मुख में रखे हैं। क्या मतलब, शिष्य प्रश्न करता है तो वो आगम की गाथा बोलता है, फलानी गाथा में तो ऐसा लिखा आप ऐसा कहते हैं। उनका शिष्य इतना विद्वान है जब सारा आगम पढ़ा हुआ है और जब भी कोई बात करते हैं तो उसके विरुद्ध बात कहां कही कौन से आगम में बोला करके उनके सामने खड़ी करता है। उनने उत्तर दिया उसमें एक आगम का प्रमाण पेश नहीं किया, उल्टी होगी ना भाई, ऐसा तो होता शंकाकार शंका करता है और वक्ता जो उत्तर देने वाला आगम के प्रमाण पेश करता है वहां उल्टा। तो ऐसा क्यों हो क्या किया, वो कहते हैं कि उनका श्रोता पढ़ा लिखा तो बहुत है, स्वाध्याय तो उसने बहुत किया महाजनी साहब, तो लेकिन अपेक्षा नहीं समझता भाई, ये सारा झगड़ा ये है, इससे वो बिल्कुल कंफ्यूज रहता है, यहाँ ये लिखा वहां ये लिखा ये क्या करें समझ में नहीं आता समझ में नहीं आता। तो पंडित जी उसको सिर्फ वो अपेक्षा समझाते हैं। और आपने गुरुदेव के प्रवचन सुने होंगे अभी भी सुनते हैं तो उसमें एक बात आती है अई ए बात नथी, एक बात क्या आएगा हजारों बार, क्या अई ए बात नथी, क्या करते हैं वो कि जब कोई गाथा का प्रवचन चलता है मान लो कि समय साल की 73वीं गाथा बराबर उसमें आया शुद्ध पर एक, तो प्रवचन सार से याद करेंगे तो पर से भिन्नता ही एकता है और एकता ही शुद्धता है, तो मुख्यमंत्री प्रसंग में कोट किया ना, ये सब प्रवचन सार का है। वहां विस्तार से वो समझाएंगे, फिर कहीं अं ये बात न थी। यहां तो एक कहते हैं क्या तेज आत्मा अनादि अनंत प्रत्यक्ष जो भी शब्द है ना, सक्षत सत्कारक की प्रक्रिया से पार है, उसे शुद्ध कहते हैं। तो इसका मतलब वो अपेक्षा ख्याल है और वो अपेक्षा बताते जाते हैं। तो पूज्य गुरुदेव जी की विशेषता है तो वो ही ये विशेषता है, यही गोदाम जी की विशेषता है। कोई भी ज्ञानी धर्मात्मा होगा तो उसमें ये विशेषता होनी चाहिए, होगा तभी वो होगा। क्योंकि जैन धर्म में अपेक्षाओं से कई तरह के कथन हैं, तो उनको जो सही तरीके से समझ लेगा, वो खतौनी सही कर लेगा, वो ही उसको समझ सकता है। अब यहां पर जो अपनी बात चल रही है, अवध स्पष्ट अनन्य अवशेष असंयुक्त और नियत, इन पांच भावों से सहित जो आत्मा को जानता है उसे शुद्ध नय जानो, उसे शुद्ध नय कहते हैं। अब ये शुद्ध नय की अलग परिभाषा देती नहीं, परिभाषा जैसी नहीं लगती है। शुद्ध नय किसे कहते हैं, जो आत्मा को अवध स्पष्ट अनन्य नियत और अवशेष और असंयुक्त जाने उसे शुद्ध नय कहते हैं। फिर वो परिभाषा हो गई ना, अब कहीं नए चक्र में माथा मार मार के मर जाना, वहां ये परिभाषा नहीं मिलेगी और न कहीं नहीं मिलेगी, ढूंढते रहना है। क्यों अजय देसी गाथा में है, और ये कौन सा शुद्ध नय है, वो परम शुद्ध निश्चय नय वाला, उनमें जो तीन में जिसका नाम शुद्ध नय है वो नहीं है, और जिसका नाम शुद्ध नय नहीं है वो है। क्यों, इसलिए गुरुदेव श्री एक बात कहते थे, आपको ध्यान हो तो, भाई वाद विवाद थी पार पड़े एम न थी, ये वस्तु वाद विवाद से पार पड़े जाए ऐसा नहीं है। क्योंकि तुम आगम के बात ले लेकर के आकर के हमें परेशान करोगे, यहां ये लिखा यहां ये लिखा यहां ये लिखा यहां ये लिखा। यदि तुम्हें ये श्रद्धा है कि तुमसे ज्यादा आगम हमने पढ़ा है, और इसीलिए कभी कहते हैं मैंने इतना शास्त्र पढ़े इतना पढ़ा बोलते थे क्या, नहीं तो अभिमान के लिए बोलते थे क्या, अभिमान के लिए बोलते थे। और टोडामल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अपने शास्त्रों की सूची दी है कि मैंने इन इन शास्त्रों का अभ्यास किया है, लिखा गया नहीं लिखा पहले, तो ये कोई अभिमान की बात नहीं थी, ये तो ये बताने की कि देखो तुम कितने हल्के स्तर से बोल रहे हो, तुम दो किताबें पढ़ के आ गए हो और हमने कितना पढ़ा है तुम्हें ऐसी खबर नहीं है। क्यों वो क्या मालूम करते थे, कोई ने कहा कि गुरुदेव श्री आपने ऐसा कहा लेकिन वहां तो ऐसा लिखा है, तो उनका उत्तर क्या आता था शाम की चर्चा में है किसी को यार, मैं बताता हूं गांव में खबर से उत्तर हो गया, मैंने वहां ये लिखा है उसका हमें पता है, ठीक पता है, और तो फिर जवाब देना कि जवाब क्या दें, यानी हम ये जवाब है कि हमें वो बात पता है और फिर भी हम ये कह रहे हैं, ये समझ में तुम हमें वो पता नहीं है और हम धोखे में ये बात कह दी है, इस धोखे में मत रहना। क्यों और फिर भी सच नहीं माने तो खबर से बधी खबर से दूसरा और क्यों, तो ये सब मालूम माथा मत मारो, तो जो हम कह रहे हैं वो समझो, वहां क्या लिखा है वो सब मालूम है, खंडी भी मैंने तो नवी चंदी का, तो तीसरा वाक्य उनका क्या होता था परमानेंट, बता रहा हूं मैं जी, जो आपको बता रहा हूं ये परमानेंट है, हर जगह मिलेगा, हजारों शास्त्र पढ़ा थे, लाखों ने श्लोक कंठस्थ किया था, श्वेतांबरों ने पढ़ा था, दिगंबरों ने पढ़ा था, बड़ी खबर क्योंकि बात का जवाब ही नहीं देते, वो तो एक ही बात कहते हैं कि तुमने कितना देखा है क्या देखा है, हमारा समय क्यों खराब करते हो, हमको वो बात जो तुम बता रहे सब मालूम है, उसके बाद हम ये कह रहे हैं, और तुम्हें समझना हो तो शांति से सुनो। तो भी महाराज बाद विवाद से पार नथी पड़े, इस तरह था बात हो गया था, चलता होगी बैठक, अब आपको फिर है जवाब तो दिए ही नहीं, तो वो ये कह रहे कि हम जो ये बात जो बोल रहे हैं उसके पीछे कितनी स्टडी है, हमारा कितना जीवन लगाया है हमने, कितनी हमने शक्ति लगाई है। क्यों सूरज जी की पूजन में वो पंक्ति आती है, जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, क्यों तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों के चिंतन करते हो। ऐसा तो ये जो ज्ञानी धर्मात्मा लोग हैं, अकेले मुनि आदि की बात नहीं है ये, वो तो गुरु का प्रकरण से गुरु के संबंध में कही, वो सब ऐसे ही है कि जब आप जाकर के टीवी वगैरह देख करके सुन के समाचार के सो जाते हैं और जो देख करते हैं तुम जानो तब वे ज्ञानी धर्मात्मा रात के 2-2 बजे तक कभी पढ़ते रहते हैं, कभी सोचते रहते हैं, कभी लिखते रहते हैं, कभी विचारते रहते हैं, कभी क्या तो उसमें से ये बात निकली है, इसलिए तुम उस गंभीरता से उस बात को सुनो। तो ये अभी कितनी बात होगी, अबद्ध स्पष्ट आदि जो 5 भाव हैं, इन सहित आत्मा को जानना वो शुद्ध निश्चय न है ये कहते हैं, और इनसे उल्टे कौन अबद्ध स्पष्ट की जगह बद्ध स्पष्ट, अनन्य की जगह अन्य, अवशेष की जगह सदशेष, नियत की जगह अनियत, असंयुक्त की जगह संयुक्त, इन भावों से युक्त जानना उसका नाम अशुद्ध नय है। क्या ये उनकी शुद्ध नय और अशुद्ध नय की परिभाषा है। कहने का अर्थ ये है कि वो परम शुद्ध निश्चय नय ही शुद्ध निश्चय नय है और बाकी सब शुद्ध निश्चय नय ही अशुद्ध निश्चय नय है। और एक स्टाइल ये है, बोलो क्या करो, उन्हीं ने पढ़ाया, उन्हीं ने लिखा, शुद्ध निश्चय ने लिखा और अभी कहने लगे वो अशुद्ध निश्चय ने। चौथे मनुष्य वाले ज्ञानी है कि अज्ञानी, क्यों सम्मदृष्टि की अपेक्षा ज्ञानी है और केवल ज्ञानी की अपेक्षा अज्ञानी है, क्यों अपेक्षा है ना शास्त्र में, और जो कर्मानुयोग की भाषा में बोलो तो अधिक अज्ञान की अपेक्षा अज्ञानी है क्या, और छह श्लोक अज्ञान की अपेक्षा अज्ञानी नहीं है ज्ञानी। अब इतनी समझते हैं, इतना तुम्हें समझते हैं, समझते हो कलकत्ता के अभ्यासी लोग, अभ्यासी तो भाग ही जाते हैं पूजा के बाद, उन्हें तो सब भगवान को अपनी बात सुनानी है, भगवान क्या कहते हैं अभी हम बता रहे हैं वो तो सुनना नहीं है, क्यों तो क्या बात है, मतलब क्या है वो कहते हैं औधिक अज्ञान माने ज्ञानवाणी कर्म के उदय से जो कम जानना होता है अथवा नहीं जानना होता है उसे बोलते औधिक अज्ञान, वो ज्ञानी और अज्ञानी सबके होता है, तो 12वें गुणस्थान तक होता है औधिक अज्ञान। मन पर ज्ञानी हो ये एक सेकंड में जिन्हें केवल ज्ञान होने वाला है तब तक उनके औधिक अज्ञान होता है, होता कि नहीं होता। और ये छह शून्य का ज्ञान ये पहले नहीं, बस पहले में से निकले गया तो दूसरे तीसरे में, अरे भैया ये तो सब सम्यक्त के भेद हैं, अवरत सम्यक्त है और क्या साधन सम्यक्त, मिश्र सम्यक्त क्या है ना, वो केवल पहले में होता है और जो 12वें तक होता है वो एक अज्ञान, बोलो सब भगवान धर्मात्मा के लिए होता है। तो औधिक अज्ञान की अपेक्षा अज्ञानी है, शोषण अज्ञान की अपेक्षा ज्ञानी है ना, तो ये सब विभिन्न अपेक्षाएं हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये जो 5 भाव बताए थे ना, जो अपन ने मैंने संक्षेप में कल परिभाषा बता दी थी, अब ये जो बताई थी वो टीका पढ़ने के पहले इसमें क्या कहा गया वो समझे अपन, तो उन्होंने अबद्ध स्पष्ट कहकर के तो पहले सबके एक के साथ सबके साथ में उन्होंने झगड़ा खत्म कर दिया, कर्मों से बंधा नहीं है तो उन्होंने उसमें से सारा द्रव्य कर्म निकाल दिए, और वो कर्मान शरीर अनादि से है जिसने एक समय भी तुम्हारा साथ नहीं छूटा है, ये औदारिक शरीर तो साथ छोड़ देता है और व्यक्ति एक हो जाता है, क्यों जब व्यक्ति एक होता जिनके उनके औदारिक नहीं होता, जिनके औदारिक नहीं होता जिनके औदारिक होता उनके व्यक्ति एक नहीं होता है, लेकिन कारमान दोनों के होता है वो कभी नहीं छोड़ता है, और विग्रह गति में ये नहीं होता है, यहाँ ओहदा रखे नहीं, मर करके स्वर्ग जा रहे, अब स्वर्ग में पहुंचे नहीं, दैव की रक्षा नहीं, और आज ओहदा रख छूट गया। एक दो तीन समय कोई सही, लेकिन वहां कारवां शरीर रहता है। तो जिसका अनादि से लेकर और जब तक मोक्ष नहीं हो जाए तब तक इसका संयोग संबंध है, समझे मैंने, अनादि से लेकर के जब तक मोक्ष नहीं हो जाए, ऐसे के साथ में उसने तुम्हें छुआ नहीं है और उससे पे तुम बंधे नहीं हो, ऐसा कह के सारे परद्रव्यों की छुट्टी एक झटके में कर दी। अगर उससे ही नहीं छुआ, उससे ही नहीं बंधे, तो तुम कौन होते हो? जैसे दुनियादारी की और चीजें क्या होती है, ख्याल है ना? ये तो बंधे स्पष्ट का है। अब अंदर आ गए अपन, बिल्कुल जैसे बोलते थे लालू भाई, प्रमाण का द्रव्य है ना, प्रमाण का द्रव्य, प्रमाण का द्रव्य माने जिसमें द्रव्य गुण पर्याय तीनों शामिल है। अब उसके अंदर भेद विज्ञान करना है, प्रमाण का द्रव्य तो वो हो गया, अब तो नयों से ही होगा ना भेद विज्ञान। तो वो कहते हैं कि असमान जाति द्रव्य पर्याय, दूसरा नंबर आता असमान जाति द्रव्य पर्याय का। क्यों आता है दूसरा नंबर? कि सबसे पहले तो देह में एकत्व बुद्धि, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, और फिर असमान जाति पर्याय, ये तो है ना देह, ये मनुष्य जीव की मिली हुई, मनुष्य देव नार की, फिर मैं मनुष्य हूं, मैं देव हूं, मैं नार की हूं, है ना, मैं गोरा हूं, मैं भूरा हूं, मैं पंडित हुकुमचंद हूं, ये तो हो गया अबद्ध स्पष्ट, और मैं देव हूं, मैं नार की हूं, ये हो गया अनन्य। तो दूसरे ने उनकी उसकी छुट्टी करी कि अनादि काल से जो पर्याय, ये कौन से पर्याय है? अब वो एक समय वाली पर्याय मत लेना यहां, क्योंकि हमको उसी की आदत हो जाना है। जब तक आज तक एक समय की पर्याय किसी का ज्ञान का गेट बनी नहीं है, बन सकती नहीं है, जब तक केवल ज्ञान ना हो जाए, तो इतनी सूक्ष्म है, समझ में आया ना? तो अभिभागी प्रक्षेप की बात भी करूंगा दो मिनट बाद, चिंता नहीं करना। क्या क्या बात चल रही है? कि वो एक समय की पर्याय असंख्य समय बाद तुम्हारे ज्ञान में पकड़ में आती है, तो वो भी अकेली नहीं आती है, उसके साथ बहुत आगे पीछे का कूड़ा करकट मिला रहता है, समझे ना? वो छोटम ज्ञान का विषय ही नहीं है, वो तो केवल ज्ञान का विषय है। तो हमने जानी कैसे? कि हमने तो आगम में पढ़ के जानी है भाई साहब, हमने तो आगम में पढ़ के जानी है, हमने उसे देखी नहीं है, हमने तो अनुमान से जानी है, और आगम और अनुमान ही प्रमाण है, समझिए ना? तो इसलिए हमारा ज्ञान तो उस पर्याय के बारे में ऐसा है, और हम उसी पर्याय में एकत्व बुद्धि, उसने किसने करी एकत्व बुद्धि उसने, बताओ तो? एक समय की पर्याय को जिसने आज तक जाना नहीं, देखा नहीं है, और उसमें हमने अपनापन करके बैठ गए, खुद ही कहते हैं कुंड कुंड कि असमान जाति द्रव पर्याय जो 60-70 वर्ष की होती है, ये मनुष्य पर्याय है, जो किसी भी समझे ना, इसमें हमने एकत्व बुद्धि की है। इसलिए दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि ये पर्यायों में ये पर्याय गई, वो पर्याय आई, ये गई। देखो अभी जरा समझने से बहुत मार्मिक बंधु है कि ये पर्याय में अपनापन स्थापित करेंगे पादमी जी, तो प्रति समय जितना दुख निगोदिया को है उतना दुख तुम्हें इस समय वेदन होगा। क्या कैसे 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 हो गया था? क्या देखो, दुनिया में सबसे ज्यादा दुख कहां है? तो निगोद में ही है ना, नरक से भी ज्यादा। अब निगोद में काय का दुख है? तो कहते हैं कि सिर से मौत का दुख है, नरक में जैसी गर्मी की, सर्दी की, ऐसे कोई दुख नहीं है, ठंड में आराम से एयर कंडीशन में रखे रहते हैं, तुम भले ही गर्मी में बैठे रहो, सर्दी में बैठे रहो, क्यों? मैं आलू जमीन के अंदर रखे रहते ना सब, अभी एक एक के घर में जाके फ्रिज की तलाशी दूं तो मुश्किल हो जाए। हमारा ऐसा भाग्य है कि आज तक हमें किसी के फ्रिज में देखे नहीं है, बस अनुमान ज्ञान से जानते हैं, क्योंकि हम जिसके घर में जाते हैं उसके पहले वो फ्रिज की सफाई कर लेता है। अमेरिका में देखिए कोई चीज दिख ना जाए उसके पहले वो अपने नीचे क्लीन कर लेता है तब तो हमारी एंट्री उस घर में हो पाती है। तो उसमें उसके उसको कहा का दुख है, तो एक श्वास में आठ बार मन न जीना यही दुख है ना। तो इसका मतलब मरने जीने का दुख सबसे ज्यादा होगा। अब जब एक श्वास में 18 बार आपने पढ़ रखा है और वो अंतर्मुद में 336 क्या होता है, इतना लंबे हो जाते हैं ना कुछ 3000 कुछ ऐसे हैं, तो ये भग ये अंतर्मुद में उतने, और अंतर्मुद में समय कितने होते हैं बोलो, उन भगों से ज्यादा होते ना। तो उस निमोद में तो अंतर्मुद में इतने भग धारण करना पड़ेंगे, और यहां तो वो एक समय की पर्याय में तुमने करी एकत्र बुद्धि और वो एक समय में नष्ट होगी, तो वो ज्यादा मरण किसका होगा। तुमने माना था ये मैं हूं और वो तो मैं मरा, ऐसा हुआ ना, उसमें हमने अपनापन किया और वो मरा भी अगले समय में, तो हमको वो प्रति समय मृत्यु का दुख हुआ। पर असमय निबोध से भी ज्यादा दुख अभी आपको कैसे होगा इसका अंदाजा लगाना। तो अब इसके दो ही उपाय हैं कि या तो ये पर्याय नष्ट नहीं हो तो हम सुखी हो सकते हैं, क्योंकि हमारा उसमें अपनापन है, तो हमारा जो मृत्यु का जो दुख है, भय है, आकुलता है, वो खत्म हो सकती है। और या ये हम मान लेंगे हम नहीं, या हम उसमें से अपनापन तोड़ दें कल नहीं ना, और या वो परमानेंट हो जाए, तो वो तो परमानेंट होने से है ना, वो तो होगी नहीं। तो हमको ही ये करना पड़ेगा कि ये मैं नहीं हूं, अब मरे तो मरे और जिए तो जिए, हमें क्या लेना देना, खत्म होगी ना। नवीन जी साहब, तो पर्याय में से जो एकत्र बुद्धि तोड़ने की बात है उसके पीछे ये रहस्य है। तो इसलिए कहते हैं कि वो एक समय की पर्याय में तो हमने जिनने शास्त्र प्रदक्षे उनको ही हुई है, होती होगी तो होती होगी, अब अव्यक्त रूप में उनको भी होती होगी, इसलिए हमारी समस्या कहाँ है। लेकिन मैं मनुष्य हूं, मैं देव हूं, मैं नारकी हूं, मेरा नाम ये है, कि इसके तो सब लोगों के 24 घंटा अपने अनुभव की बात है क्या नहीं, क्यों तो? इसलिए वो कहते हैं दूसरे नंबर पर क्या लिया उनने, अनन्य वाला बोल दिया, तू मनुष्य नहीं है, तू देव नहीं है, तू नारकी नहीं है, तू तंत नहीं है, तो क्या है बोलो। अब हमारी एक भाषा है तो हम समझते हैं कि ये इन सबसे जो जुदा है वो सुनी भाषा, तो मैं थोड़ा बदलता हूं, दोनों का अंतर समझना। इन सब में जो कॉमन है वो मैं हूं, अंतर समझ में है ना। वो कहते हैं इन सब से जो जुदा है, जुदा क्या है, सब में ही तो है। तो जो मनुष्य में, देव में, नारकी में, त्रिंच में, इन सब पर्यायों में जो कॉमन है वो मैं हूं। कोई भी मेरे को बोलना नहीं तो मैं जो कहना चाहता हूं वो आप नहीं सुन पाएंगे और आप समझ नहीं पाएंगे, फिर आप अपने लोकल विवाद में उलझ जाएंगे। आप मेरे को कहने देना जो मैं कहना है। अब अंतर समझ में आया ना दोनों बातों का, कि वो जो मैं मनुष्य देव नारकी त्रिंग इन सब में आत्मा है क्या नहीं, और वो आत्मा कॉमन है क्या नहीं है? तो ये वो इनमें कॉमन है तो ये चीजें छूट जाती हैं, और वो कायम रहा इन सब में, तो जो कायम रहा वो मैं है, जो बदल जाए वो मैं नहीं हूं, जो नष्ट हो जाए वो मैं नहीं। ये ऐसी बात नहीं है, एक 80 वर्ष का बुढ़ा है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि नवानू 2-4 दिन में कब खत्म हो जाएगा हम कह नहीं सकते, अब दवा की जरूरत नहीं है, दुआ की जरूरत है, अब तो राम का नाम लो क्यों, अब ले जाओ घर में, फिर अपन रोने लग जाए। ऐसा समाचार सुने तो मोतई का समाचार हो गया ना, तो बेटा रोने लग गया, तोते रोने लग गए तो वो कहता है क्यों रोते हो, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारा कोई बाल भागा नहीं कर सकता, तो इसीलिए तो रोते। तुम गारंटी दे रहे हो ताकि जब तक तुम जिंदा हो तब की, और तुम अब जिंदा रहने वाले नहीं हो, तो जो उसके गारंटी की क्या कीमत मुझे बताओ, जो एक क्षण बाद मरने वाला है वो कितनी गारंटी हमें दे रहे, तो उसके गारंटी के भरोसे हम रह सकते हैं? तो एक समय की पर्याय की क्या गारंटी, ना तो उसके रहने की गारंटी नहीं है, तो वो दूसरे को क्या गारंटी दे। तो अपने पास तो एक ही उपाय है कि मैं बताया करूं, उसे सुखी होना है तो एक ही उपाय, उसमें से हम अपना एकत्व ममत्व छोड़ दें। तो है तो अपनी, हम कब कह रहे कि नहीं है, उसमें झगड़ा क्या कर रहे, पहले तो हमने मान ली ना अपनी। देखो ऐसा बोलते हैं शास्त्र की भाषा बोलता हूं मैं, ये जो अपना बेटा है वो अपना नहीं है। पहले क्या बोल रहे कि जो अपना बेटा है वो अपना नहीं है, यानी दूसरे का बेटा पड़ोसी का बेटा अपना नहीं है, इसमें क्या दम है? इसमें पंडित हुकुमदेव जी क्या दम लेते हैं, ये तो सारा गांव बता देगा। अड़ोस के पड़ोस के सारे और लोग, वो औरतें मेरी पत्नी नहीं है, और उनके बच्चे मेरे बच्चे नहीं है, उनके माँ बाप मेरे माँ बाप नहीं है, उनका मकान मेरा मकान नहीं है, क्यों? ये कौन नहीं जानता मेरे कहने का मतलब है, इसमें मेरी क्या जरूरत है? हम तो ये बताने आए हैं कि जिस मकान में तुम रहते हो, ऋषि ऋषि तुम्हारे नाम है, जिसमें तुमने सारे पैसा तुमने खर्च करे हैं, जमीन से तुमने बनाया था, वो तुम्हारा नहीं है। बोलो सुनना है सबक में जी, जिसके तुम सात फेरे पार के लाए हो, समझे ना, और जीवन भर नहीं छोड़ने की प्रतिज्ञा करी है, वो पत्नी तुम्हारी नहीं है, वो बच्चे तुम्हारे नहीं है, वो माँ बाप तुम्हारे नहीं है, जो है वो नहीं है, तो पर्याय जो है वो नहीं है। क्यों? बच्चे को निकालना है घर में से, हमें देश जगेगा तो बच्चे को घर में से निकालेंगे, राग जगेगा तो बच्चे को घर में रखेंगे, और बीत रागता जगेगी तो न बच्चे को निकालेंगे न रखेंगे, खुद निकल जाएंगे। क्यों? अंतर समझ में आया कि नहीं? अपना धर्म तो वीतरागता वाला धर्म है, वीतरागा है नमः। हम अपन बोलते हैं ना बहुत अच्छा सत्य बात, उसमें बारह भाव मेरी भावना है ना दुगलेश्वर मुख्तियार की, उसमें बहुत पहली पंक्ति की आती है बहुत अच्छा, तो साम्य भाव रखूं मैं उनसे ऐसी परिणति हो जाए, ऐसा था ना, जब मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा सूत्र बहे, दुर्जन क्रूर कुमार के रथों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, तो साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। उन पर माने क्या है भैया? क्यों? तो तुम अपने मन मन में उत्तर देखो, साम भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। फिर मैं फिर पढ़ता हूं, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत्र बहे, दुर्जन क्रूर कुमार के रथों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। क्या है उसका उन पर का तो दुर्जन क्रूर कुमार के उन पर, उन पर साम्य भाव रखना है, ये जो अनुकूल है उन पर तो नहीं रखना है ना, मतलब राज तो करना है ना, साम्य भाव माने क्या, मोह खोए दीनो परिणामो अपनो हूं समो, लिखा है ना पांचवी गाथा में लिखा कि मैं साम्य भाव को प्राप्त होता हूं उपसम्यापि सम्मम जत्तो निर्माण संपत्ति, मैं उस साम्य भाव को प्राप्त होता हूं जिससे निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो ये साम्य भाव मैंने कल भी थोड़ा कहा था कि किसी से राग है तीव्र, अब उसने अपनी बात नहीं मानी और आपने उसके पीछे सर्वसमर्पण किया, सारी जिंदगी पाप की कमाई करी और उसे दे दी, क्यों मकान बना बना के उसे दे दिया, बढ़िया बढ़िया बेडरूम बना करके और अपन बाहर दालान में पड़े रहते हैं, और फिर जब वही बेटा आंख बदल लेता है ना, क्यों तो क्या हो जाता है, तो एकदम राग टूट के देश हो जाता है। अब मैं इसे पहले दे चुका हूं, अभी नहीं दिया होता तो मैं सब मंदिर में दे जाता। मैंने कहा भैया तुम जो भी बोलना हो बोलो, मंदिर का नाम मत लिया करो, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, क्यों इसलिए नहीं लिया करे कि उस बेटे को थोड़ा बहुत मंदिर से प्रेम होगा तो मंदिर और शत्रु हो जाएगा, क्यों आप तो हो गया ना, मंदिर शत्रु हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वो ये कहे मैं इसे दे दूंगा तो वो शत्रु हो जाएगा ना उसका, तो अपने देश में मंदिर को भागी क्यों बनाते हो, तो हमारे मंदिर को ना मालूम हमने क्या समझ रखा है, रस्ते में जाएंगे 100 रुपए का पड़ा हुआ नोट मिलेगा, चारों तरफ देखेंगे कोई नहीं है तो अपन रख देंगे, अपन को बच जाएगा, फिर कुछ दिक्कत नहीं है, और यदि एक आध आदमी आ गया अच्छा लगेगा 100 रुपए का नोट मिलाया, चाहे ठीक है ठीक है, चलो अभी चल अभी अपन जाके चाय पानी कर लेते, इससे होट अपन में जा करके चाय पानी कर लेते हैं, तो अकेले को तो पचेगा नहीं वो है ना, और पचास पचास बांध लो जरा अच्छा नहीं लगता है, तो चाय पानी कर लेते हैं, फिर यदि 4-5 आदमियों ने देख लिया तो अब क्या करें, चलो तो मन के गुल्लक में डाल देते, अब हमें नहीं पचेगा, अब भगवान को पचेगा, जो तेरे को नहीं पचे भगवान के पचे, भगवान को क्या जरूरत है ऐसी तेरे 100 के नोट की, क्यों ये पाप का धंधा खोटा काम क्यों गुल्लक में डालता है, गुल्लक को क्यों पवित्र करता है, अच्छी चीज डालना हो तो किसी को नहीं पता तो गुल्लक में डाल देना, तो भगवान के साथ ये अच्छी बात नहीं है, तो वो बात चल रही है क्या साम भाव का मतलब है, ना राग हो ना द्वेष हो, तो वो सब पर है, कौन जिनसे हमने मैत्री की बात करी, जिनसे हमने करुणा की बात करी, उन सब पर मैं साम्य भाव रखूं, साम्य भाव का मतलब न राग करूं न द्वेष करूं, और हमारा बस एक खेल हो रहा है कि क्या तो हम राग करते हैं जम जम के उसके ऊपर सर्वसमर्पण कर देते हैं, और फिर द्वेष करते हैं तो ऐसा एक एक पैसे का भिखारी नहीं बना दिया तो मेरा नाम नहीं, क्या करते नहीं करते, आचार्य कहते ये धर्म नहीं है, ये तो राग से पलट के देश हुआ तो और बुरा हुआ, और फिर हम क्षमा वाणी आती है, मैं सबसे क्षमा मांगता हूं, मैं आप सबसे बहुत प्रेम से रहूंगा, तो तुमने देश छोड़ के राग किया, क्षमा वाणी इसका नाम है क्या, ये तो हो ही रहा है 24 घंटे, तो क्या करना है हमें कि जब हमारा देश कम हो भाग्य से हो तो उस वक्त ये सावधानी रखनी है कि राग ना हो जाए श्री, और जब हमारा किसी निमित्त से राग घटे चाहे भले वो प्रतिकूलता के कारण घट रहा हो तो उस वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि देश ना हो जाए, उसका नाम साम्य भाव है, जगत की पढ़ने की जगत जाने है ना, मेरे को उससे क्या लेना देना, और जो जिसका है वो अपने अपने परिणामों का फल भोगेगा, अपने कर्म माना है जो भी स्थिति होगी, साम्य भाव इसका नाम है भाई साहब, वो जो कुंदकुंदाचार्य ने घोषणा करी पांचवी गाथा में प्रथम साल में कि मैं साम्य भाव को प्राप्त होता हूं, वो इस साम्य भाव की घोषणा करी है, राग से बदल के देश और देश से बदल के राग वाले की नहीं करी है, अगली गाथा में लिख दिया मोह छोए दीनो परिणामो अपनो ही समो, और फिर आगे जगह 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 जाकर के भी गाथाएं उठा उठा के याद करते हैं कि ऐसा किया था हमने, वहां प्रतिज्ञा करी थी कि मैं साम भाव को प्राप्त करता हूं इसलिए अब मैं ऐसा करता हूं, अब मैं ऐसा करता हूं, अब मैं ऐसा करता हूं, और वो दीक्षा लेने की प्रतिज्ञा थी ना, तो फिर याद करते हैं कि वो साम भाव की प्रतिज्ञा करी थी और हमारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। काय की प्रतिज्ञा पूरी हो गई कि प्रतिसार पूरा हो गया? नहीं, हमारी काय की प्रतिज्ञा होता तो होता, नहीं होता तो नहीं होता, हमारा बाप का करा उसने। तो क्या प्रतिज्ञा पूरी हो गई कि मैं अब साम भाव को प्राप्त हो गया हूं तो मैं अपने आत्मा के अनुभव में जाता हूं। इसका नाम साम भाव को प्राप्त होना है। तो ये मनुष्य आदि जो पर्याय हैं, अभी अपनी क्या बात हुई कि ये अन्य अन्य हैं और भगवान आत्मा क्या है? अनन्य है। अनन्य है माने हर पर्याय में है, किसी पर्याय में नहीं है का नाम अनन्य है नहीं है, हर पर्याय में होने का नाम अनन्य है। महावीर और मारी इन दोनों में वो आत्मा था, इसका नाम वो है कि उन्ना महावीर था वो आत्मा और महावीर आत्मा था वो, तो जो आत्मा तो बिल्कुल अलग ही था, वो तो जो कुछ होंगे और होंगे क्यों। सर अतुल जी कुछ मेरा अपन लगता है क्या कह रहा हूं जो मैं उसमें अनन्य का वाला बोल हुआ। अब टीका में तो अपन अलग चलाएंगे, अभी फिर आएगा मामला, अभी खत्म नहीं हो गया। अब तीसरा जो बोल था अपन ने कहा था साहब नियत, और नियत में वो सद्गुणी हानि वृद्धि की बात करी थी और उसमें अविभागी प्रतिच्छेद की बात आती है। तो अविभागी प्रतिच्छेद क्या है? अविभागी प्रतिच्छेद क्या है? देखो अपन ने 100 पान रखे, कौन से? देसी पान, और उनमें जोर से ऐसा सुया मारा ऊपर से, तो ऐसा रख करके ठोकर मारी तो 100 पान एक साथ छिट गए। क्यों? एक क्षण में। सच्ची बात है, 100 पान एक साथ छिट गए। क्यों? से छिड़े जब ने शीर की नोक ने उसमें पहले पान में प्रवेश किया था तब दूसरे में नहीं थी वो, माने वो कम से कम 100 पान थे तो उसने 100 समय लगे तो होंगे असंख्य समय, लेकिन 100 समय भी गिनो तो हर पान में अलग अलग काल में वो सुई गई है, हमें पता नहीं पड़ता। अब जो ये तो पता नहीं पड़ता, अब अंतिम बिंदु आ गया ज्ञान गुण का, इसका उसका जैसे समझ गया ना। अब दूसरा उदाहरण देता हूं कि पहले समय में ये जीव यहां है मध्यलोक में और अगले समय में मोक्ष में जाके बाहर मान लिया, 7 राजू पार कर लिया एक समय में, एक समय लगा ना। तो अब बोलो कि जब वो रस्ते में हुआ, जब वो यहां है उसी समय देवलोक में है उसी समय और है, जितनी भी 7 राजू में जितने भी अब प्रदेश हैं आकाश के कितने होंगे? असंख्य प्रदेश होंगे ना, लोकाकाश की असंख्य प्रदेश है ना, है? हाँ 7 राजू, तो 7 राजू में जितने प्रदेश होंगे सारे लोकाकाश की असंख्य प्रदेश हैं, तो असंख्य ही होंगे, अनंत तो हो नहीं सकते। तो वो असंख्य प्रदेशों में से एक ही समय में पार हुआ। अब कैसी गलत बात है कि जब वो यहां था उसी समय मोक्ष में था, मोक्ष के नजदीक था, बिल्कुल समझ जो भी समझ लो। अब इसका क्या करें, ये कैसे हो सकता? ये आपका अविभागी प्रतिच्छेद आ गया कि जिसके 2 टुकड़े नहीं होते हैं जिस समय के, उसके भी अविभागी प्रतिच्छेद अनंत होते हैं, तो गुणों में होते हैं, प्रदेशों पर्यायों में जो होते हैं, जो अपने कहते घटते बढ़ते सद्गुणी हानि वृद्धि उसी का नाम है। इस जो है ना समुद्र दरिया, तो दरिया की जब उछाल आता है और इतना पानी आगे बढ़ जाता है ना, पानी भर्ती आ जाती है, और जब दूसरा होता है ना कि ज्वार और भाटा इतना घट जाता है, उस काल में समुद्र में से एक बूंद पानी कम ज्यादा नहीं हुआ। जब आपका यहां नीलों ऊपर उछाल आ जाता है तब भी एक बूंद बढ़ा नहीं, और जब कम होता है तब एक बूंद घटा नहीं। क्या बात करते हो आप? अरे वो तो उस समुद्र में जितना पानी है वही पानी ऐसा ऐसा हो रहा है, तो जब इधर को ऊपर आया तो वो उधर को नीचे हो गया, तो इधर को नीचे हुआ तो उधर नीचे, ऐसा होता है। चांदनी रात में होता है, उछलता है। तो जब वो चंद्रमा की हम है पृथ्वी, ऐसी पृथ्वी है ना, अभी जनधन भूगोल तो ये समझाएगा अब ऐसी है तो थोड़ी ऐसी हो गई, समझ मांगे तो वो पानी सब इधर आ गया, इधर खाली हो दिखाएगा द्वार, यहाँ यहाँ द्वार आ गया, यहाँ भाटा, और फिर थोड़ी ऐसी हो गई तो यहाँ द्वार आ गया, यहाँ भाटा आ गया। ऐसे ही इतने गुण के अंदर, ज्ञान गुण के अंदर असंख्यात अभागी प्रतिच्छेद हैं, और वो उनको घटना बढ़ना, वो ऐसी सदगुणी हानि वृद्धि होती है, और घटता बढ़ता कुछ नहीं है। पूरा सुरक्षित रह करके हानि वृद्धि होती रहती है, और वो हानि वृद्धि वो मैं नहीं हूं, मैंने उस त्रिकालित भगवान आत्मा परम सत्य निश्चय ने कहा विषय जिसमें मुझे अपनापन करना है, वो मैं नहीं हूं। क्यों कि वो जो घटने बढ़ने वाली बात है वो मेरे चित्त में विकल्प खड़ा करती है, चित्त को निर्विकल्प नहीं होने देती है, और अनुभूति निर्विकल्प दशा में होती है, इसलिए उसका यहां निषेध किया। और कोई क्या सदगुणी हानि वृद्धि नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं है भालचंद जी साहब, अब आप सोच जाना कि नहीं है, नहीं है वाला जो हमने इतना इतना पक्का कर लिया है कि अब है वाले कहने को मुश्किल पड़ जाता है, वाले को मुश्किल पड़ जाती है, समय हो गया, मैं कल कहूंगा बात।